ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज श्री शिव गीता स्पिरिचुअल डिस्कोर्स प्रेजेंटेड बाय श्री रजनीकांत चांदवडकर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
शिव गीता अध्याय 9। श्री भगवान बोले, हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुमसे देह का स्वरूप कहता हूँ। यह संसार मुझ ही से उत्पन्न होता है, मुझ ही से धारण किया जाता है, और जिस प्रकार भ्रम निवृत्त होने से रजत सीप में लय हो जाती है, इसी प्रकार यह जगत ज्ञान से मुझ में लय हो जाता है। मैं निर्मल पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं संग रहित शुद्ध सनातन ब्रह्म हूँ। मैं अनादि सिद्धि माया से युक्त होकर जगत का अकारण होता हूँ। मेरी माया का वर्णन नहीं हो सकता। उसमें सत्व रज तम यह तीन गुण रहते हैं। सत्व गुण शुक्ल वर्ण मनुष्यों को सुख और ज्ञान देने वाला है, और रजोगुण का रक्त वर्ण है, यह चंचल और मनुष्यों को दुख देने वाला है। तम का कृष्ण वर्ण है, यह जड़ और सुख दुखों से उदासीन रहता है। इसी कारण मेरे संयोग से वह त्रिगुणात्मिका माया मेरे ही अधिष्ठान से इस प्रकार जगत को रचना करके दिखाती है। जिस प्रकार अज्ञान से शुक्ति में रजत और रस्सी में सर्प दिखाई देता है, मुझसे माया के द्वारा आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। मुझसे प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। उन्हीं पांचों से उत्पन्न हुआ यह सब देह पंचभूतात्मक कहलाता है। पिता माता के भक्षण किए अन्न से यह षटकोशात्मक शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें स्नायु अस्थि और मज्जा पिता के कोष से उत्पन्न होते हैं। त्वचा मांस और रुधिर यह माता के वीर्य से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार माता और पिता संबंधी षटकोशात्मक देह में माता से उत्पन्न होने वाले, पिता से उत्पन्न होने वाले, रज से उत्पन्न होने वाले तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले चार पदार्थ है। उसमें रक्त, मेदा, मज्जा, प्लीहा, यकृत, गुदा, हृदय, नाभि इत्यादि मृदु पदार्थ माता से उत्पन्न होते हैं। श्मश्रु, लोम, केश, स्नायु, शिरा, धमनी, नाड़ी, नख, दंत, वीर्य आदि स्थिर पदार्थ पिता से, पिता के संबंध से होते हैं। पुष्टता, वर्ण, तृप्ति, बल, अवयवों की दृढ़ता, अलोलुपता, उत्साह इत्यादि रज से उत्पन्न होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयुष्य, इंद्रिय इत्यादि यह आत्मज अर्थात आत्मा से उत्पन्न हुए कहलाते हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण यह पांच ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। क्रम से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह पांच इनके विषय है। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ यह पांच कर्मेंद्रिय है। बोलना, लेना, देना, चलना, मल विसर्जन और रति यह क्रम से पांचों इंद्रियों के पांच कार्य और मन उभयात्मक है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतकरण के चार भेद है। सुख और दुख यह मन का विषय है। स्मृति, भय, विकल्प इत्यादि मन के कर्म है, और जो निश्चय करता है उसी को बुद्धि कहते हैं, और जो निश्चय करती है उसी को बुद्धि कहते हैं। और अहम, मम, यह जो अहंकारात्मक मन की वृत्ति है इसे ही चित्त कहते हैं। यह अंतकरण भी रजोगुणादि के भेद से तीन प्रकार का है। सत, रज, तम यह तीन गुण है। जब सतोगुण प्रधान होता है तब आस्तिक्य बुद्धि, स्वच्छता, धर्म में रुचि इत्यादि सात्विक धर्म प्राप्त होते हैं, और जब रजोगुण होता है तो काम क्रोध मद इत्यादि होते हैं। तमोगुण की प्रधानता में निद्रा आलस्य प्रमाद वंचना होती है। इंद्रियों की प्रसन्नता आरोग्य आलस्य का न होना यह गुण सत्व से उत्पन्न होते हैं। इन पांच महाभूतों की मात्रा से उत्पन्न हुआ यह देह उनके गुणों को धारण करता है। उनमें शब्द श्रोत्र इंद्रिय वाणी कुशलता लघुता धैर्य और यह बल सात गुण आकाश से इस स्थूल देह में प्राप्त होते हैं। स्पर्श गुण त्वगिंद्रिय उत्क्षेपण यानी ऊपर को फेंकना अवक्षेपण यानी नीचे को फेंकना आकुंचन यानी सकोड़ना प्रसारण यानी फैलना गमन यानी चलना यह पांच कर्म है। प्राण अपान व्यान समान उदान यह पांच प्राण है। नाग कुर्म कुरकल देवदत्त धनंजय यह पांच उपप्राण कहलाते हैं। यह एक ही वायु के विकार को प्राप्त होने पर दश नाम धर लिए है। उसमें प्राण पवन मुख्य है जो नाभि से लेकर कंठ तक स्थित रहता है और नासिका नाभि तथा हृदय कमल में गमन करता है। शब्द के उच्चारण निःशब्द निश्वास और श्वासादिक का यही कारण है। गुद लिंग कटी जंघा उदर नाभि कंठ अंडकोश जोड़ों की संधि और जंघाओं में अपान वायु रहता है। उसका कर्म मूत्र और पुरीष का विसर्जन यानी त्याग करना है। नेत्र कर्ण पाप के घुटने जिह्वा तथा नासिका इन पांच स्थानों में व्यान वायु रहता है। प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक इसके कर्म है। समान वायु सब शरीर में व्याप्त होकर जठराग्नि के सहित 72,000 नाड़ियों के रंध्र में संचार करता है। भोजन किए और पिए हुए संपूर्ण रसों के देह की पुष्टि के निमित्त लेकर चरण हाथ और अंग की संधियों में उदान वायु रहता है। देह का उठना चलना यह इसका कर्म कहा है। त्वचा मांस रक्त अस्थि और स्नायु इन पांच धातुओं के आश्रय नागादि पांच उपप्राण रहते हैं। डकार हुचकी यह नाग पवन का कर्म, पलक खोलना लगाना कटाक्ष यह कुर्म का कर्म, भूख प्यास छींकना कुरकल का कर्म है, आलस्य निद्रा जंभाई देवदत्त का कर्म है और शोक और हास्य धनंजय का कर्म है। अग्नि के धर्म चक्षु कृष्ण नील शुक्ल इत्यादि रूप भोजन का पाक स्वतः प्रकाश क्रोध तीक्ष्णपन क्रूशता ओज इंद्रियों का तेज संताप शूरता और बुद्धि यह गुण तेज से प्राप्त होते हैं। और रसनेन्द्रिय रसशीत चिकटापन द्रवत्व पसीना और संपूर्ण अवयवों में कोमलता यह धर्म जल से उत्पन्न होते हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध स्थिरता धैर्य गुरुत्व यह धर्म पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। त्वचा रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा और शुक्र यह सात धातु शरीर को धारण करते हैं। पुरुषों का भक्षण किया अन्न जठराग्नि से तीन भाग हो जाता है। तीसरा स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस और सूक्ष्म भाग मन होता है। इससे मन अन्नमय कहलाया जाता है। जल का स्थूल भाग मूत्र, मध्यम भाग रक्त और कनिष्ठ भाग प्राण कहलाता है। इससे जलमय प्राण है। तेज का स्थूल भाग अस्थि, मज्जा मध्य भाग और वाणी सूक्ष्म भाग है। आशय यह है कि अन्न उदक और तेज रूप सर्व जगत है। रक्त से मांस उत्पन्न होता है, मांस से मेदा, मेदा से अस्थि और अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है। मांस से ही नाड़ी उत्पन्न होती है और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। वात, पित्त, कफ, यह तीन धातु शरीर में रहते हैं। शरीर में दशांजलि प्रमाण जल रहता है और नौ अंजलि रस अर्थात अन्न रहता है। रक्त आठ अंजलि विष्टा, सात अंजलि कफ, छह अंजलि पित्त, पांच अंजलि और मूत्र चार अंजलि रहता है। चर्बी तीन अंजलि, मेदा दो अंजलि, मज्जा एक अंजलि और वीर्य आधी अंजलि रहता है। इसको बल कहते हैं। शरीर में अस्थि 360, शंख, कपाल, रुचक, अस्तारण और नवक, यह पांच प्रकार की अस्थि होती है। शरीर में 210 यानी 210 अस्थियों की संधि है। उनको रौरव, प्रसर, स्कंद, कंद, स्कंद, सेचन, उलुखल, समुदग, मंडक, शंकावर्त और वायस तुंडक, यह आठ भेद अस्थियों की संधि के है। 3.5 करोड़ सब शरीर पर रोम है और दाढ़ी के बाल 3 लाख है। हे दशरथ कुमार, इस प्रकार यह देह का रूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया। इस देह की समान निस्सार पदार्थ दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं है। इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष महाअभिमान करते हैं और अहंकार रूप पाप से मुख्यानंद मोक्ष का कुछ भी उपाय नहीं करते। यह महाशोक की बात है। इस कारण मुमुक्षु को वैराग्य दृढ़ होने की निमित्त यह स्वरूप जानना अवश्य है। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघव संवादे देहस्वरूप निर्णयो नाम नवमोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय 10। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवन, इस देह में यह जीव कहाँ वर्तमान है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका क्या स्वरूप है, सो आप कहिए। देहांत में यह कहा जाता है और जाकर कहाँ स्थित होता है? देहांत में यह कहा जाता है और जाकर कहाँ स्थित होता है और फिर देह में किस प्रकार आता है वा नहीं आता, सो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग, बहुत अच्छी बात पूछी है जो गुप्त से भी गुप्त है, जिसे इंद्रादि देवता और ऋषि भी कठिनता से नहीं जान सकते। हे रघुनंदन, मैं भी यह किसी दूसरे से नहीं कहना चाहता, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं कहता हूं। मैं ही सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद परमात्मा, परम ज्योति, माया से मोहित जीवों को न दिखने वाला, संसार का कारण, नित्य विशुद्ध, संपूर्ण का आत्मा, सर्वांतर्यामी, निस्संग, क्रिया रहित, सब धर्मों से परे, मन से भी परे हूं। मुझे कोई इंद्रिय नहीं ग्रहण कर सकती, मैं संपूर्ण का ग्रहण करने वाला हूं। मैं संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूं और मुझे कोई नहीं जानता। मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूं। बाल्य यौवनादि परिणाम आदि विकार भी मुझमें नहीं है, जहां मन के सहित जाकर वाणी निवृत्त हो जाती है। उस आनंद ब्रह्म मुझको प्राप्त होकर यह प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता है। जो संपूर्ण प्राणियों को मुझमें देखता है और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखता है, वह निंदा रहित हो जाता है। जिसको संपूर्ण प्राणी आत्मा रूप दिखते हैं, उस सर्वत्र एक रूप देखने वाले को शोक और मोह नहीं होता। यह संपूर्ण भूतों में गुप्त रूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता, परंतु संपूर्ण में वर्तमान है। सूक्ष्मदशी श्रवण मनन निधिध्यासन साधना करने वाले पुरुषों को अग्रबुद्धि से दिखता है, दूसरे मनुष्यों को नहीं दिखता है। अनादि माया से युक्त निर्विकार अविनाशी एक मैं ही नाम रूप रहित ब्रह्म जगत का कर्ता परमेश्वर हूँ। जिस प्रकार विद्या के साक्षी भूत ज्ञान पर स्वप्न में त्रिलोकी की कल्पना की जाती है, इसी प्रकार मुझ में यह सब जगत उत्पन्न हो दिखता है, स्थिति पाता है और लय हो जाता है। अनेक प्रकार की अविद्या के आश्रय होकर जीव रूप से भी मैं ही निवास करता हूँ। पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह चारों पंच प्राण, यह सब मिलकर लिंग शरीर को उत्पन्न करते हैं। उसी लिंग शरीर में अविद्या युक्त यह चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को व्यवहार में जीव, क्षेत्रज्ञ और पुरुष कहते हैं। वही जीव अनादि काल से पुण्य पाप से निर्मित हुए स्थावर जंगमादि देहों में वास कर शुभाशुभ कर्म का फल भोगता है। उसी को परलोक गति होती है तथा वही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का भोगता है। जैसे दर्पण के मलिन होने में मुख भी मलिन दिखता है, इसी प्रकार अंतकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखता है। अंतकरण और जीव इन दोनों के परस्पर अध्यास के कारण और एक भाव का अभिमान करने से परमात्मा भी दुखी सा प्रतीत होता है। वास्तव में सब दुख का धर्म अंतकरण में है, जीव में नहीं। परंतु जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने से वह जल के चलायमान होने से चलायमान विदित होता है, इसी प्रकार अंतकरण के सुख दुख होने से वह वही जीव में आरोपण किए जाते हैं। जिस प्रकार की मारवाड़ देश में दोपहर के समय सूर्य की किरण रेत में पड़कर जल रूप से प्रतीत होती है, उसमें केवल अज्ञान से जाना जाता है वो जल रूप नहीं है, वास्तव में संताप ही करने वाली है। इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है, परंतु वह मूढ़ बुद्धि वालों को अविद्या और अपने दोष के कारण कर्ता भोक्ता प्रतीत होता है। इस अन्नमय पिंड के स्थूल देह में हृदय के विषय जीव स्थित रहता है और नख के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त हो रहा है। सो तू सावधान होकर सुन, वही यह जीव मैं, मनुष्य मैं, ब्राह्मण इत्यादि अभिमान करता हुआ इस मांस पिंड में स्थित है। नाभि से ऊपर और कंठ से नीचे अवकाश के स्थान को व्यास करके सदा स्थित रहता है, व्याप्त करके सदा स्थित रहता है। इतने ही स्थान के बीच में हृदय है, जिसका स्वरूप डंडी सहित कमलकली के समान है। उसका मुख नीचे को है, उसमें सूक्ष्म और सुंदर एक छिद्र है, उसी को दहराकाश कहते हैं। उसमें जीव रहता है। केश के अग्रभाग का सौवा भाग कर फिर उसका भी सौवा भाग करके जो प्रमाण किया जाए, वही सूक्ष्मता जीव की जाननी चाहिए। वस्तुतः तो जीव के स्वरूप का प्रमाण नहीं है कि ऐसा है और इतना है। जिस प्रकार कदंब के फूल को मध्ययाई चारों ओर केशर होती है, इसी प्रकार से हृदय स्थान से सहस्त्रों नाड़ी निर्गत हुई है जो शरीर भर में व्याप्त है। वे हित और बल को देती है, इस कारण उनकी हित संज्ञा है। योगियों ने उन नाड़ियों की संख्या 72,000 कही है। जिस प्रकार सूर्य से किरण निर्गत होती है, इसी प्रकार वे नाड़ी हृदय से निकली है। उनमें 101 मुख्य नाड़ियों ने संपूर्ण शरीर को वेष्टित कर दिया है और प्रत्येक इंद्रियों में 10-10 नाड़ी है। उन्हीं के द्वारा विषयों का अनुभव होता है। यह नाड़ी ही सुख दुख, जागृत, स्वप्न आदि के साक्षात का कारण है। जिस प्रकार नदी जल को बहाती है, उसी प्रकार नाड़ी सुख दुख रूप में सुख दुख रूप कर्मक फल को बहाती है। इन 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऊपर अनंत नाम बहती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई है। जो अनंत अर्थात सुषुम्ना नाम नाड़ी है, उसमें प्राप्त होकर यह जीव मुक्त हो जाता है। जिस समय वह अंतकरण कामादि दोष शून्य होता है, उस समय यत्न करने से योगी का आत्मा इस नाड़ी में प्राप्त होता है। परंतु उस समय सद्गुरु की कृपा और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है, कारण कि ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार से राहु अदृश्य रहकर भी चंद्रमंडल में दिखता है, इसी प्रकार सर्वत्र रहने वाला आत्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। जिस प्रकार घट के ले जाने से घटाकाश भी लेकर जाया जाता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भी जीवात्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। यद्यपि वह सर्वत्र पूर्ण और निश्चल है, परंतु वह जागृत अवस्था में घटादि पदार्थों का चैतन्य प्रतिबिंब युक्त होने से अंतकरण वृत्ति से व्याप्त होकर चंचल सा दिखता है। जिस प्रकार सूर्य दशो दिशाओं को व्याप्त करता है, इसी प्रकार निष्क्रिय और सर्व पदार्थों में व्याप्त लिंग देह के संबंध से उत्पन्न हुई अंतकरण की वृत्ति नाड़ियों द्वारा बाहर जाकर विषयों में प्राप्त हो उन्हें प्रकाश करती है। अपने किए उन कर्मों के अनुसार जागृत आदि अवस्था में सुख दुख का साक्षात्कार जीव करता रहता है। संपूर्ण वृत्ति लिंग शरीर से उठती है। जब तक मोक्ष न हो तब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता। जिस समय ज्ञान द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाएगा और अविद्या सहित इस लिंग शरीर का नाश हो जाएगा, उस समय केवल आत्मा का अनुभव मात्र यानी अहम् ब्रह्मास्मि इस स्वरूप में स्थिर होने से ही मुक्ति होती है। जिस प्रकार घट के उत्पन्न होते ही घटाकाश उसमें प्राप्त हो जाता है और उसके नष्ट होने से वह अपने स्वरूप में अवस्थान करता है, इसी प्रकार माया के नष्ट होने से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। जब जागृत अवस्था में भोग देने वाले कर्मों का क्षय होकर स्वप्न काल में भोग देने वाले कर्म जागृत समय के देह गेहादि विषय के साक्षात करने वाले जानकर छिपाकर जब जागृत होते हैं, तब इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा से पूर्वानुभव किया हुआ स्वप्न समय के विषय का जागृत होने पर यह मायावी अविद्योपादि जीव माया की निद्रा के योग से जागृत अवस्था में भी स्वप्न से भिन्न स्वरूप अवस्था की ओर देखता है। घटपटादि विषय बुद्धि आदि इंद्रिय और स्वप्न समय के भोग देने वाले पदार्थ की समान सब सृष्टि अंतकरण ने कल्पना करी है। जिस प्रकार इकला मनुष्य स्वप्न में अनेक मनुष्य देखता है, भोग भोगता है और संसार की सब रचना भिन्न भिन्न जानता है, यथार्थ में एक ही है, इसी प्रकार वास्तविक आत्मा है, परंतु अंतकरण की कल्पना से यह जगत अनेक भाव से दिखता है। इन सबको देखने वाला स्वयं ज्योति आत्मा साक्षी रूप से सब में वर्तमान है। इस अवस्था में अंतकरण आदि सर्व पदार्थों की वासना भावना से की हुई असत्य होने से वह वासना रूपी ही है और परमात्मा उस ही स्थान में वासना मात्र से साक्षी है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में कर्ता कर्म किया इत्यादि संपूर्ण कारणों से युक्त व्यवहार चलता है, इसी प्रकार पूर्व जन्म के किए कर्मों की प्रेरणा से वासना रूप प्रपंच है, परंतु जागृत अवस्था में प्रपंच का व्यवहार समर्थ होता है और स्वप्न अवस्था में कल्पित है। इसी यही इसमें भेद है। संपूर्ण बुद्धि वृत्ति का साक्षी आत्मा स्वयं ही प्रकाश करता है। उस साक्षी का जो वासना मात्र साक्षीपना है उसे स्वप्न कहते हैं। बाल्यावस्था में जागृत जो कर्म स्तनपान कंदुक क्रीड़ा आदि किए हैं, उस समय उसी की वासना हृदय में प्रबल रहती है। इस कारण वे ही स्वप्न में दिखते हैं। और तरुण अवस्था में इंद्रिय अपने व्यापार में कुशल हो जाती है। यह प्राणी अनेक व्यापार में व्यग्र हो जाता है। अध्ययन कृषि व्यापार आदि की वासना हृदय में अत्यंत दृढ़ हो जाती है। इसी कारण तद्रूप ही स्वप्न देखता है। और जो वृद्धावस्था में परलोक जाने के निमित्त दान धर्म विद्यादि दान ऐसे उत्तम कर्म करते है, उनके हृदय में यह वासना दृढ़ हो जाती है, तो प्रायः यह भी इसी प्रकार के स्वप्न देखते हैं कि हमने दान किया, इस प्रकार लोक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार से श्वेन पक्षी आकाश में भ्रमण करते जब थक जाता है, तब विश्राम का और कोई उपाय नहीं देखकर निज पंखों को सकोड़ कर अपने घोंसले में विश्राम लेता है, इसी प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था में विचारने से जब आत्मा श्रांत होता है, तब संपूर्ण इंद्रियों के शिथिल होने से सब साधनाओं को लय कर देता है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को समाप्त कर निद्रित हो जाता है। नाड़ियों के मार्ग से इंद्रिय की वासना को आकर्षण कर जागृत और स्वप्न अवस्था के सब कार्य समाप्त कर आत्मा लीन हो जाता है। जिस समय यह माया से आच्छादित चैतन्य अव्याकृत स्वरूप में लय होता है, उस समय संपूर्ण प्रपंच लय हो जाता है। परंतु यह लय आत्यंतिक नहीं है, इसमें केवल कार्य रूप का नाश होता है, कारण रूप वासना बनी रहती है। जिस पुरुष की किसी स्त्री को अत्यंत इच्छा हो और वह उसे प्राप्त हो जाए, उसके संभोग से जो सुख हो जाता है उसकी सीमा है, परंतु उससे कहीं अधिक सुख निद्रावस्था में जीव को आनंदमय कोश में प्राप्त होने से होता है। जब जीव को बाह्य विषय का ज्ञान नहीं होता, वह अंतर अर्थात मोक्ष की अवस्था की समान जिसमें विषय वासना अत्यंत निवृत्त होती है, निवृत्त वासना वाला भी नहीं होता। निद्रावस्था में जीवात्मा जब ईश्वर को प्राप्त होता है, तब जागृत आदि अवस्था में जैसे ईश्वर से भिन्न रहता है, तैसा भी भिन्न रहता है, तब भी भेद नहीं जाता। ऐसा होने से ही वह उस समय दुख रहित होता है, क्योंकि कारणात्मा में उसका साम्य माना जाता है, एकत्व पाता है, इस कारण औपचारिक है। जो भी उस अवस्था में अविद्या की सूक्ष्मत्व वृत्ति आने से जैसे सुख अनुभव करता है, उस सुख को जैसे